بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يكله منه مجهول ولا يكفيه نداء مهجور. اذ كل مؤمن منتقص من سواه فكل معنى مذموم ما خلا. وهو المنان بفوائد النعم وأوائد المزيد والقسم. ما اختلف عليه نحن فيختلف منه الحال. فلا كان في مكان فيجوز اليه الانتقال. ثم الصلاه والسلام على النبي الامي الواقف بجميع السياسات والحكم والعارف بما في دور القلم سيدنا الممجد وبشيرنا المسدد ونذيرنا المؤيد المصطفى الامجد المحمود الاحمد القاسم محمد.
اللهم صل على
والصلاه والسلام على حبيب الطيبين الطاهرين المعصومين وسيما على الامام المنتظر والحجه الصالح الشيخ والاب المشتهر والعنه الدائمه على اعدائه اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في احسن التاريخ وهو اصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اقربكم الى الله اتقاكم فما بينكم من
ذلك. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.
آج رسمی طور پر مجلس کا آغاز کرنے سے پہلے کچھ جملے شب دعا ہے شب جمعہ ہے شب سید الشہداء ہے سید الشہداء کی ساحت مقدس میں ان کی بارگاہ میں جس طرح سے کل ہم نے اشارہ کیا حبیب کے وسائل کے بعد میں کہ حبیب پہنچے اور حسین کے لشکر نے نعرہ تکبیر بلند کیا. آہستہ آہستہ حسینی کاروان روان دواں ہے اس لکودک صحرائے کربلا کی جانب جہاں آج سے 1400 سال پہلے تاریخ انسانیت کی تاریخ اسلام کی ایک ایسی عظیم مثال اب عبداللہ اور ان کے ساتھیوں نے قائم کی جو نہ اس سے پہلے تھی نہ اس کے بعد تھی. بعض لوگ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں مجھے تعجب ہے موجودہ سراہن سنتن کلو کلو روایات کی مخالفت ہے کہتے ہیں کلو یوم عاشورہ جبکہ ہمیں روایتوں ملتا ہے لا یوم یوم یا عبداللہ حسین آپ کے دل جیسا کوئی دل نہیں تھا. اور اتنا زیادہ اس بات پر ان کی سائز ہے امام حسن مصطفیٰ کا وقت آتا تھا اس ملعونہ جو ادھر اشرف نے جب زہر دیا اور زہر کو اندر لہر کے اندر جانے کی دیر تھی جگر ناظرین کلیجہ جو ہے کٹ کٹ کے دست میں آنے لگا. روایت کے لیے پہلا مرحلہ ایسا ہوا کہ جب کسی نے آ کر آواز کی کہا زینب آ رہی ہے امام حسن نے امام حسین سے کہا دست کو تخت کے نیچے کر دو. تو کسی نے سوال کیا کہ کیوں یا رسول اللہ تخت کو دست سے نیچے کر دو. کہا بہن نہیں دیکھ پائے. اور امام حسین کی آنکھوں کا یہ آنند تھا کہ مکہ نویسوں نے جملہ لکھا کہ تھوڑی دیر میں اتنا گریا کیا کہ اتنی حصے زخمی ہونے لگے. تو امام حسن نے کہا اتقی اتجزا روتے ہو جزا کرتے ہو. کہا کئی پلا اجزا بولا آپ کی کیسے نہ ہوا کیسے فریاد نہ کروں. آپ دیکھیں پہلے نانا گئے پھر ماں گئی پھر بابا گئے آج آپ بھی جا رہے ہیں. آج کل ایک حسین جی کی بڑا تکلیف دیکھا لائیے ہو مگر یوم بابا کے نام سے تمہارے دل جیسا کوئی دل نہیں ہوگا. اور واقعی وہ 10 گھنٹے صبح آشو سے لے کر اثر آشو تک اس دل جیسا کوئی دل نہیں ہوگا. کاروان آئیے حسینی اور کس قدر اجر و ثواب ہے کتنے خوش نصیب ہیں. آپ نے کبھی سوچا اجر و ثواب کیا ہے؟ میں صرف کامل و زیادات کی ایک روایت کی طرف اشارہ کروں کہ جس کے اندر چھٹے امام کہتے ہیں اگر وہ شخص روز آشور محزون اور غمگین گزار دے شہر مقدس سے کربلا میں. یعنی میں نے جب یہ روایت پہلی مرتبہ کامل و زیادات بھی پڑھی تو میں نے کہا مولا حرم تو نارملی خواتین کے لیے بند کر دیا جاتا. خیر باہر حالات بھی ایسے نہیں ہوتے. میں تو کبھی کسی کو ریکمینڈ بھی نہ کروں کہ آپ اپنے آپ کو ظریف تک پہنچائیں. وہ قمے کا ماتم اور وہ خون معلوم جو لباس پڑے تھے ان کے وائٹ کلر کے اور کس طرح سے پلاسٹک اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں اور ٹینکرز کے ذریعے کربلا کا شہر شام کے وقت دھویا جا رہا ہوتا ہے. وہ خواتین کی جانے کی جگہ بھی نہیں ہے. وہ خواتین کا کام نہیں ہے. وہ مردوں کا کام ہے. مرد جانے بقول آغا شیرازی کے آزاد دار جانے فاطمہ जहर डाले, हम बीच में क्या बोले और क्या ना बोले, लेकिन अगर कोई शख्स सही वक्त फरमाते हैं सिर्फ उस दिन उस शहर के अंदर गुजार दे इस आलम में कि वो गमजदा हो। अभी मुमकिन नहीं है कि आप करबला में हो, काशू का सूरज नमूदार हो और आप गमजदा ना हो, काश की दिन महज वहां गुजारना 4 लाख हज और उम्रे का सवाल है। अच्छा अगर रिवाज यहाँ पर रुक जाती काम की जा रहा थी, हम कहते मौला हमें तो 4 लाख को गिनने के लिए भी उंगलियों के अंदर इतनी पोरे नहीं थी ना, और हमारी तस्वीर के दामों के अंदर 100 से ज्यादा की गुंजाइश नहीं है। कहा अगर कोई शख्स चाहता है कि वो उस सवाब और उस अज्र को हासिल करे कि गोया उसने असली आशू ने वहां उसे सारे साथियों को सारे लश्कर को सैराब किया हो, तो सिर्फ इतना काम करे कि करबलाए मुअल्ला में आशूर के दिन किसी मोमिन को पानी पिला दे। और वाकई पानी की मोहताज है। बड़ा ही खूबसूरत झूठा हमारे उस्ताद ने नकल किया, कहा जब ईरान और इराक के बॉर्डर सील थे और सद्दाम का जमाना था और ऑब्वियसली आसान नहीं था लोगों के लिए करबलाए मुअल्ला जाना, कहा बगदाद में जो कौंसलेट के ऑफिस में काम करने वाले बंदे खुदा ने उनके नकल किया, गांव में क्या करबला मुअल्ला ज्यारत करने के लिए, तो करबला के खादिम ने इमाम हुसैन के गरीब के खादिम हरम के खादिम ने बताया कि पाकिस्तानी खातून लोग यहाँ रहना चाहते हैं और हर आने जाने वाले से किसी पाकिस्तानी का पता मालूम करती है। यह अदाशी कहते हैं, ये जो कॉन्स्टेंट में काम करने वाले ऑफिसर थे कहने लगे मैंने अपने आप को उस मोमिना तक पहुँचाया, मैंने बड़ा अपने जैसी साइड में कहा जी मां जी क्या हुक्म है, कहा कि आया तो मेरे छोटा सा काम कर दो, कहा हुक्म करे, कहा मेरे खत ले जाओ, कहा अच्छा कहा उन्होंने खत लिखवाया, मैंने खत लिख दिया, खत लिखने के बाद मुझे खत से महसूस हुआ कि ये मोमिना पिछले कुछ सालों से करबला मुअल्ला में मुकीम है। अब मैंने खत तो ले लिया और कमेंट भी कर दिया कि पाकिस्तान जाके पोस्ट कर दूंगा आपके एड्रेस पर। कहा मेरे जहन में एक बेसाख्ता सा सवाल आया कि इंसान होने के नाते इंसानी जिस्म के कुछ तकाजे हैं, उसे नहाना धोना पड़ता है, उसे रब की हाजत करनी पड़ती है, उसे खाने की जरूरत है, उसे सोने की जरूरत है, उसे पानी पीने की जरूरत है। मैंने उस मोमिना से पूछा कि माँ जी आप यहाँ कितनी देर से रह रही हैं, उन्होंने कहा कुछ साल हो गए हैं बस मैं यहाँ आई हूँ, मेरा वापस जाने का दिन नहीं हुआ। कहा माँ जी अगर आप रह रही हैं तो आपकी कुछ बॉडी के तकाजे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, इंसानी फितरी तकाजे हैं। कहा क्या करती है, कहा ये जो अतराफ में 2-4 होटल है उस जमाने में आज की तरह करबला भी आबाद नहीं था, जिन्होंने सद्दाम के जमाने में ज्यारत की है वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्या क्या था करबला और क्या मर्जी थी उसे किस शान और शौकत के साथ सजा के चाहने वालों ने रख दिया। कहा कि ये होटल वाले मुझे इजाजत देते हैं, मैं जिसके होटल में जाकर नहाना चाहती हूँ नहा लेती हूँ, वॉशरूम का इस्तेमाल करना चाहती हूँ कर लेती हूँ। कहा माँ जी ये तो हो गया एक बात का मसला, इससे पहले एक मरहला है जिसे भूख कहा जाता है, जिसे इंसान के पेट की और नफ्स की ख्वाहिश कहा जाता है। कहा उस खाने पीने का क्या करती है, कपड़े जैसे स्टाइल में मंजावी है और ठेठ ऐसे में मुड़कर पीछे जरीन को देखा और कहा यह खुद भूखा प्यासा दुनिया से चला गया है लेकिन इस शहर में किसी को भूखा प्यासा रहने नहीं देता। और हकीकत है 7 के बाद तो बंदा होटल भी नहीं मुड़कर जाता, चाहे भूखे ही लगे हो चाहे खुदा के 1000 नियमत ही क्यों ना हो, जगह जगह सभी जगह जगह खाने में जुमला कहूँ जिस जुमला भी नहीं से जाकिरा नहीं कह रही। एक आजादार है अबू अब्दुल्ला होने की हैसियत से कह रही खुदा आपको जिंदगी में एक दफा अपनी फैमिली को लेकर आजमूर पर जरूर था। हम जिस जगह पर बुढ़चप होते हैं हमारा होम लैंड होते हैं ना, हमें अपने मोहरों में वहाँ कशी देती है। आपने खारागर के लोगों को देखा होगा अरे चढ़ते हैं खारागर में, अच्छा वहां पर मौला नहीं यहाँ मौला नहीं है। हम मैं बेसिकली बर्थ और ब्रोच ऑफ लाहौर की हूँ, मुझे लाहौर का मुहर्रम याद आता है। 2 साल पहले मैं मुहर्रम करने अशा पढ़ने की जैसे जैसे जहाँ आई हूँ वहां पढ़ गई थी और मुझे याद है बचपन की बहुत सारी स्वीट मेमोरीज। मैंने जिंदगी बहुत सारी जगहों का मुहर्रम किया लेकिन जब 11 या 12 साल पहले पहली मतलब मैंने आशू किया तो मैंने अपनी फैमिली वालों से एक जुमला कहा दुनिया में कहीं पर भी आजमून करबला जैसा रिमोट है, वो जगह गमजदा है, वो शहर गमजदा है। अगर आप किसी ऐसे खुदा किसी ऐसे होटल में अकोमोडेशन देते जहाँ से ऊपर से दोनों गुंबद नजर आ रहे हों, इंसान गुंबद को देख कर कहते वाला कहाँ बुला दिया आपने, कहाँ खड़ा कर दिया आपने, अपना मेहमान बुला लिया आपने, और क्यों हम हुसैन इब्ने अली के मेहमान बनने की ख्वाहिश ना करें। क्योंकि जब एक घोट पानी और एक मोमिन को सैराब करने के मुकाबले में आपको वाकिदा के पूरे लश्कर को सैराब करने का सवाल मिलता है عظمت ابن علی دین کے دستور سے پور فخر موسیٰ کی تجلی کا فصول پور سے پور سے فخر نو کے سنا دیدہ منصور سے پور صبر شبیر کبھی سجدہ آشوں سے پور. انسان جب اب عبداللہ کی خدمت میں جاتا ہے تو اس کی کیفیت ہی الگ ہے, اور کیوں الگ نہ ہو. میں ایک روایت کرنا چاہتا ہوں سید احمد مستمر کی کتاب القطرہ کے والیوم نمبر 1 سے, کہ مولا کائنات اتنی ٹھنڈی سلوار پڑھ کے نا سن کے میرا تو دل بیٹھ جاتا ہے. میں سوچی میں اتر جاؤں گا اور کوئی نہیں
ہوگا.
میرے بزرگوار کے ساتھ مسجد النبی میں داخل ہوئے جو صاحب تھے, نانا محراب میں بیٹھے لوگوں کے سوال سنتے تھے. اللہ کے رسول بیٹھ کر مسجد میں نماز کے علاوہ نماز سے پہلے نماز کے بعد دوڑ کر بات کی انہیں چھوڑ دیا اور جا کر نانا کی گود میں بیٹھ گئے. رسول اللہ نے کبھی نقصان کے بوسے دینا شروع کیے, کبھی پیشانی کے بوسے دینا شروع کیے. اتنی دیر میں کچھ قدم کا فاصلہ طے کر اب الحسن امیر المومنین بارگاہ رسالت میں پہنچے, سلام عرض کیا, بیٹھ گئے. کہا یا رسول اللہ اتحبک, اے اللہ کے رسول آپ حسین سے محبت کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اتنی پکیاں چل رہی ہیں, اتنی محبت کے اظہار کر رہے ہیں, گلے سے اٹھانا چل رہا ہے, رخساروں کے بوسے ہیں, پیشانی کے ہیں, ہونٹوں کے ہیں, گلوگا کے ہیں. محبت کیسے نہ کروں, یہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے. حسین تخلیق کردگار کو دیکھا ہے بارہا, شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی. جب تک خدا رہے گا رہے گی حسینیت, اتنی دراز عمر ہے زہرا کے لال کی. زہرا کی گود سے اتار دیا गया, रसूल अल्लाह ने मुंह से उतार दिया हुसैन को और कहा कि हुसैन बाप पर हुआ हाथ करना चाहते हो? कहा बिल्कुल करना चाहता। कहा काजी होने की हैसियत से अभी तक तो बहुत मिलना लैस पर लाया हुआ था, अब काजी होने का तकाजा ये कि अगर एक तरफ अबुल हसन बैठे हैं तो एक तरफ हुसैन बैठ जाए और अभी मैं दोनों की नमाज सुनना तय करूँ कि कौन अपने इदावे की सब तक मुकम्मल है। कहा कि हुसैन आप एक तरफ बैठ जाओ। अब आप लोग उसको किसी भी ताले में आकर तशरीफ फरमा गए, अब्बा का चेहरा देखने लग गए। कहा बाबा पहले आप शुरू करें। अब यहाँ पर सैयद अहमद मुसब्बिह ने 3.5 सफ़े की रिवायत बयान किया। वाला फरमाते मैं ये बयान करते 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 एक मकाम आया, वाला खामोश हो गया और वहां काफी है। मैंने तो अपना क्रेडिट बयान कर दिया ना, मैंने कौन कौन से काम किए हैं। अब हुसैन तुम्हारी बारी है, तुम आओ मैदान में और मेरे क्रेडिट और मेरी सहमतों में मौला के जुमले ऐसे जुमले इंसान पढ़ता है सुनता है रंग के लग जाते हैं। मौला कहते हैं अना जालिम सैफ हुसैन, ने कहा जिस दिन एक जंग को दो तलवारों से लड़ा और जब दूसरी तलवार हाथ से टूट कर गिरी तो आसमान से जिब्राइल ने कहते हुए आए ला पता है ला अनिला सैफ ला
चटा
रखी थी आंसू की कली जमीन हरम पर भरूती हली कहा मेरी दादी आपकी दादी के साथ ही मुकाबला है बोला खामोश हो गई क्या करें कहा चाहिए तो दादा दादी नाना नानी की बात है मेरा आखिरी सवाल है मैं तो उठकर चला जाऊंगा मेरे मम्मी ने कहा कि आका मुझे इतना बता दिया आपके माँ बाप का मकाम ज्यादा है मेरे माँ बाप का लेकिन माँ बाप दादा दादी और नाना नानी का शर्म मेरा आपसे ज्यादा है और ये कहा खुदा ने कहा अबुल हसन हुसैन की पेशानी का पोसा लो वाक्य शर्म के अंदर बेमिसाल है और वाक्य से गला का लाल वाक्य हर एतबार से बेमिसाल है किस मकाम पर नहीं सुनते कभी कभी आप सिर्फ वाकई करबला को एक गैर जालीदार शख्स होने के नाते वाकई करबला करबला के अंदर पहली बात जीना मुश्किल था मरना आसान इमाम हुसैन ने जैसे करती मैं जिसमें चाहे क्या उससे खयाफा संगत खुलवाई इमाम ने कहा ना साहब ने ऐसा नहीं क्या मेरे फैसलों का उम्र साथ के पास चला उसके बाद फिर इमाम हुसैन ने ये नहीं देखा कि मेरे पास हमारे यहाँ एक कम इसके मार्ग के अलावा बहुत सारे शोहदा के प्रोग्राम उसका क्या है 101 लश्कर-ए-कूफा में सार और अब्दुल हकीम आगे अली नजर की मुख्तलिफ के रवायत उनकी नतूर आगे किताब सही कर करबला से अभी तो भाई लड़ रहे थे अच्छा किसी शख्स को दिल बदलने के लिए ना लम्हा काफी होता बाद लोग सालों में नहीं बदल पाते ये लोग लड़ते रहे आखिर में जो क्रिटिकल सिचुएशन होगी ना जब इमाम हुसैन उस चीज वाहे को लेकर आए मुझे अलीस्कर के मसाए नहीं पड़े लेकिन एक झूठा अलीस्कर इमाम हुसैन के हाथों पर सुषमा देकर एक भाई ने साथ जब लगभग से कहा ये बड़ी नामती है ये हमारे साथ अच्छा नहीं करा मछली के पेट की तरह चमक रही है थोड़ा जो हुसैन के हाथों का बच्चा प्यास के आलम में कारण मैं समझ रहा था दो इख्तदार की जगह है लेकिन अब बच्चा आ गया है बीच में अब हुसैन कह रहे हैं कि तुमने तो मुसलमान नहीं हो तो सारी औलाद तो होगा ना छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा तुम्हारे फैन में भी हम जाएंगे हुसैन मजमून के पास इमाम हुसैन एक्सेप्ट कर लेंगे कहा कि दरवाजा किसी को खाली नहीं साथ वो भी जो भी जिसने कहा वाला मुझे अपनी फैमिली बड़ी प्यारी है मेरा बड़ा अच्छा आइडियल लाइफ स्टाइल है मेरे पास पूरे के अंदर जमीने हैं जायदादें हैं घर है नौकर है चाकर है कहीं से यहाँ गुलाम है मैं ऐसे कैसे आपके इंसान शहीद हो जाए मानी का ठीक है बस इतना दूर चले जाओ कि हमारी आवाज ना सुन पाओ और उबैदुल्लाह बिन मुर्रे जो भी इस बात का कलंक था पिछले इमाम हुसैन का साथ में गया उसने कहा मैं तीन चीजें प्रेजेंट करना चाहता हूँ जानते हैं लेकिन बताने पहला मेरी ये तलवार ये पत्थर पर पड़ती है तो पत्थर के दो टुकड़े कर देती है मैं आपको तोहफा देना चाहता हूँ कहा दूसरे मेरी ये ढाल आपने देखो मैं सरकार शेर में लोहा होता है जो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए जंग में इस्तेमाल किया जाता था उस जमाने में कहा जब तलवार इस ढाल से इस जिला से ढाल से टकराती है तो तलवार टूट जाती है ढाल पर असर नहीं आता कहा तीसरा मेरा ये घोड़ा जब मैं इस घोड़े की पूंछ पर बैठा हूँ दुश्मन इसे धूल देती है इमाम ने कहा तुम हमारा साथ में चले जाओ हमें तुम्हारे तलवार घोड़े और ये ढाल की कोई जरूरत नहीं है उबैदुल्लाह बिन मुर्रे जो भी वाकई करबला में उस सब के इलाके से बहुत दूर चला गया हत्ता वाकई करबला खत्म हो गया वाकई करबला का खत्म होने के बाद उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास चले गए उसरा को उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कुछ दिन रोकर रवाना शाम कर दिया कुल बहुत स्मूथ होने लगा क्योंकि इससे पहले कूफा के अंदर बहुत क्रिटिकल पॉलिटिकल सिचुएशन थी कर्फ्यू जैसी कैफियत नाफिज थी उबैदुल्लाह बिन मुर्रे अपनी फैमिली के पास आया है जैसे ही पहले अपने लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया मैंने खुद इसकी ट्रांसलेशन किया है अरबी का लफ्ज सही तरह यही टूल ताजा पहले टूल ताजा पर पहुंचा इसे उठाकर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास बैतुल्ला के घर में जो भी सब बैतुल्ला के साहब के पास पहुंचा था, सलाम अलैका या अमीर, कहा आप मुझे अमीर कहते हो, मैंने सुना तुम्हारे को हुसैन से मुलाकात थी तबारा में, कहा हाँ, कहा लेकिन मैंने हुसैन का साथ नहीं दिया, कहा तुमने हमारा साथ नहीं दिया। उबैदुल्ला बिन इब्ने ज़ियाद ने इसके कत्ल का हुक्म साबित किया, लेकिन वो बहुत बहुत होते ना मुस्लिम बड़ी सरस वाले होते हैं, उनकी बड़ी प्यार होती है, इस हुक्म पर अमल दरामद नहीं कर पाया। उबैदुल्ला बिन मुर्र ने दो पीस की इजाजत से अपनी फैमिली को मिलने के बहाने गया, उसी तेज रफ्तार घोड़े पर बैठकर इसने फुरात के अंदर छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। अब आप सोचिए कितनी कितनी बदनसीबी है, मुझे नहीं पता ये वाकई करबला के गजनीबाद की दास्तान है, तारीख भी नहीं बयान किया जहाँ बैतुल्ला बिन मुर्र ज्योति की दास्तान है, 12 दिन बाद की बात है। अरे अगर तुमने मरना ही उठा तो 10-12 दिन पहले पढ़ लेते, खता कयाम कयामत खड़े होने वाले खड़े होकर कहते अस्सलाम अलैकुम हुसैन वाला अलीम फिर हुसैन वाला औलाद हुसैन वाला साबिल हुसैन, तुमने अपने आप को अबदी जन्नत से जहन्नम में हवाले कर दिया। और वैसे माशाल्लाह आप यकीनन मुझसे ज्यादा रेगुलर बेसिस पर ज्यादा आशुरा पढ़ती होंगी, मैं ये सवाल इशारा करूं और मसाइल के बाद में से सिर्फ एक सलावत पढ़ी हो ऐसे लोग थे उबैदुल्ला बिन मुर्र गोपी जैसे, जिन्होंने इमाम हुसैन को छोड़ दिया आखिरी लम्हा में, साद और अबुल हुजूर जैसे जिन्होंने लास्ट मोमेंट्स पर आकर इमाम हुसैन को ज्वाइन कर दिया, और एक आखिरी शहादत इमाम हुसैन की शहादत से पहले अब्दुल्ला बिन हसन की शहादत। ये एक कम से बच्चा है, मुझे चला गया मोहम्मद के मसाइल को नहीं, लेकिन अपनी बात को मुकम्मल किया के मसाइल के बारे में। इमाम हुसैन सजदे में गिर चुके हैं, फौज अस्किया ने चारों तरफ से घेर लिया, हमारे एक बराबर जिम्मेवार ने भी साथ रहने का इंतजाम हुआ, हाँ कहते हैं जब बहुत नजदीक देखते हैं, मैंने कहा आपने मुझसे अपने सुनी बड़ी प्यारी, मैंने एक बात देखा हम आका बहन के पास बैठी है, हमने कहा मौर आगा जहाँ मख्तल है वो जगह, और जहाँ अबा अब्दुल्ला घोड़े से गिरे हैं वो जगह, और जो बहुत प्रॉपर वे आपको हाईलाइट करें ना ये जगह, ये इन्होंने जो मकामे अकबर और मकामे असगर और कभी अब्बास और कभी ऐमन बनाया, वल्लाह वाले मुझे नहीं पता, मैंने अभी लास्ट जब पहली बार 2003 में करबला जा रही थी, मैंने बुक पढ़ी तो उसने कहा कि ये बहुत 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 सेंचुरीज के बाद ये सब बनाया गया, मुझे इसके अंदर बहस में जाने नहीं है, वो सारा शहर ही ऐसा है। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी से सीखी ना, जब अच्छे कुफी के साथ गए थे तो कदम जमीन पर रखते थे तो उठाते थे, उन्होंने कहा जाबिर जमीन में करबला गर्म बहुत है, कहा नहीं, कहा कि पैर रख तो उठा के नहीं, कहा पैर तो रखने कम इंसान है तुरंत का तकाजा चलेगा तो पैर जमीन पर रखे गए, लेकिन जब जमीन पर रखते तो सोचू पता नहीं कहाँ किस वक्त कहाँ होगा। आगे रहता से जब सवाल किया कि जहाँ अब्दुल्ला घोड़े से गिरे थे वो जगह नहीं है जहाँ मक्तल है, कहा तो जवाब पूछे जाएंगे, कहा हुसैन अपने आप को कोहिनूर के बल घसीट कर खयाम के करीब कर दिया, और उस आलम में अब्दुल्ला इब्ने हसन नाम एक बच्चा है मुस्लिम, इमाम हुसैन ने आवाज दी नया मत आओ, ये बच्चा था इसने कहा चचा तो आ रहा, इमाम ने कहा आओ, मुझे नहीं पता इमाम हुसैन का कौन सा इम्तिहान, इम्तिहान बहुत अजीब जवाब है, अब्दुल्ला का सब्र से ज्यादा अजीब था, सबरे खान के तो सभी जारी है, तो मैं और फिर सुकून शहर की देखी तेरा कभी सब कुछ लुटा के भी तेरा मौला है बचपन अकबर को सो रहा है यसमन की कब्र है, जब भी चुप खड़े हुए ना निजाम के सब में तेरी सवाल का सब तो हमारी सोच से बाहर है, मैंने अभी तक पहली मुहब्बत से अभी तक اسی مجلس میں میں مجلس کے آغاز سے پہلے جناب سیدہ کو اپنے آن پر بیٹھ کر یہاں دعوت دے دی، لیکن آپ نے بیٹی سے کوئی بیٹی مجلس کے اندر میں آئے تو بیٹی کو ساتھ دے دیا، وہ آئے ہماری مجلس میں ہم کو جو شہزادوں کا غصہ آیا، اور بھی قریب سے فرزن میں بولے بار میں تمنا ہے بار میں کیسی اچھی نعمت کے ساتھ آئی ہوں سب آنسو تک اللہ کی بیٹی کبھی بھگوان کو تیار کرتی ہے کبھی محمد کو، ہمارے شاعروں نے تو کہہ دیا دلبرانے داخل تیار الوداع الوداع الوداع، لیکن کوئی زینب کے دل سے بھیجے کیسے رخصت نہ ہوں گے، سب آنسو بار میں دنیا دیر نہیں ہوں گے، اور علی کی سادہ بیٹی کبھی کون سے کبھی محمد سے کہتی تھی کو کر دیوار کی قابل ہے اس سرزمین کربلا پر بڑے نامور بچے جمع کیے حسین بن قاسم کے لیے کہ تمہارا نسب توڑا ہے، تمہارا صرف نانا صاحب رائیت علم بردار نہیں رہا، تمہارے تو دادا بھی رسول اللہ کے علم بردار رہے لشکر کے علم بردار رہے، آجمور کے لگبھگ جب اصحاب کی قربانیاں ہو چکی ہیں اور بنو ہاشم کی باری آئی خیمہ مادر میں آئے، ہاں نے کہا اور محمد ابھی تک یہاں پر ہو، کہاں ہم مامو کے پاس جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں بھیا ایک پر کھڑے ہیں، بھیا قاسم کھڑے ہیں، مامو عباس کھڑے ہیں، عمر اکرم کھڑے ہیں، عمر اسفر کھڑے ہیں، عثمان عبداللہ جعفر کھڑے ہیں، چپ چاپ پلٹ آتے ہیں بچوں کی طرح کھڑے ہو، اب میں لے کر جاؤں گی، اور بچوں کو لے کر حسین کی خیمے تک حسین کی بارگاہ تک آئے، حسین کھڑے ہو کے پاس آئے کہ انتظام کیا، اور جب کھڑے ہو گئے تو شہزادی نے جھولا کہا بھیا جب آئی مانگنے آئی، آج میں کچھ لے کر آئی ہوں، گھبراؤ امامت تو سب وقت ہے اور جہاد اور قتال کی قربانی نہیں دے سکتی، تو یہ دو چھوٹے چھوٹے سے پرسن لے کر آئی ہوں، اسے آج امامت پر قربان کر دیا جائے، امام حسین کے بہن کے درمیان کچھ جھنڈوں کا رقو بدل ہوا، اس کے بعد امام حسین نے دونوں شہزادوں کو عباس کو آواز دے کر گھوڑے پر بٹھایا، پہلی مرتبہ جب جنگ لڑنے کے لیے، لیکن یہ کم سے بچے ہیں وہ مسجد عباس کی لڑکی ہیں جنہیں جنگ لڑنے کے آداب سکھائے گئے ہیں، پہلے حملے کے بعد جب دونوں بھائیوں سے کسی ایک آواز ہی تو حسین نے آواز دیا عباس چلو میرے ساتھ میں اکیلا نہیں جاؤں گا، اور جب بھی شہزادے گھوڑے سے گرے ہیں تو عباس اور حسین سرزمین کربلا پر مقتل میں پہنچے، ایک بچہ عباس نے اٹھایا اور ایک حسین نے خیموں میں لے کر آئے زمین خیمہ پر رکھا، بیٹی اور میں نے کبرا کا چہرہ دیکھ رہی ہے، اور زینب نے آگے بڑھ کر بھائی کی پریشانی کا بوجھ دے دیا، بلیدان نے راہ خدا میں تو سب کچھ کر دیا، صرف دو موقع ایسے ہیں جہاں علی کی بیٹی بیٹلا میں ہوئی ہے، ورنہ یہی حسین کی بہن صابرہ بہن ہے، جب زندانی شام میں شوہر کے سر آنا چاہیے حسین کا سر آیا آغوش میں دیا، اکبر کا سر آیا پھر ملا آغوش میں دیا، شام کی عورتوں نے عجیب منظر دیکھا، زندانی شام کی زمین پر دو سر ایسے ہیں جنہیں کوئی اٹھانے والا نہیں، شام کی عورتوں نے کہیں بچوں کی ماں بھی ہے تارے ہمیں رائے خدا نے صدقہ کر دیا تھا ہم پرش کا دیتے نہیں، لیکن زندانی شام میں یہ کہتے روانہ ہو گئی
परेशान हाल की परेशानी को दूर